أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بيان الأمر الثاني وهو بيان بطلانهما فنقول أما الدور فهو عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه كما يتوقف أليف على باء وباء على أليف وهو باطل بالضرورة. پچھلے درس میں تھوڑے سے تذکرات کی ضرورت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ شارح محترم نے فاضل مقداد نے مصنف کی عبارت کو وضاحت کرنے کے لیے برہان بیان کیا. جناب شارح نے برہان کو جس قیاس کے اندر بیان کیا ہے، اس قیاس کا نام ہے قیاس استثنائی. کل اس مطلب کو اس لیے عرض نہیں کیا تھا تاکہ اصل مطلب کو فہم کرنے میں زیادہ ذہن صرف ہو. جب مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو یہ والا مطلب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، تو لہذا آج اس مطلب کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں. جناب فاضل مقداد نے برہان امکان و وجوب کو قیاس استثنائی کی شکل میں پیش کیا ہے. قیاس استثنائی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قیاس، باب قیاس جو کہ علم منطق کا اساسی ترین باب ہے، اصل منطقی وہی ہے، باقی تمام چیزیں اس کے لیے مقدمات ہیں، چاہے منطق اول ہو چاہے منطق دوم میں باب قضایا کی بحث ہو، سارے مقدمات ہیں. کس کے لیے؟ باب قیاس کے لیے. قیاس کی دو قسمیں کرتے ہیں، قیاس یا اقترانی ہوتا ہے یا استثنائی ہوتا ہے. چونکہ یہ علم منطق کے ساتھ مربوط ہے اور میں نے منطق میں اس کو تفصیلا ذکر کیا ہے، تو آپ تفصیل وہاں سے حاصل کریں گے. میں فقط اپنے مقصود کو بیان کرنے کی تھوڑی وضاحت کروں گا. وہ الگ بات ہے، عرض کر رہا ہوں منطقی باتیں ہیں منطق کے اندر. تو یہاں پہ فقط آپ کو اتنا عرض کرنا ہے کہ جو مطلب میں کہنا چاہتا ہوں وہ مطلب واضح ہو جائے. قیاس اقترانی و قیاس استثنائی. قیاس اقترانی اس کی اپنی شرائط ہیں، وہ آپ کو علم منطق کی طرف رجوع کریں گے. ایک ہے قیاس کی قسم قیاس استثنائی. قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس کا سقرا یا پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے اور دوسرا مقدمہ اس کا قضیہ خبریہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، حرف استثناء اس کے اندر ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ پہلا مقدمہ قیاس استثنائی کا یہ ہے کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا، درست؟ لیکن زید میرے پاس آیا یا لیکن زید میرے پاس نہیں آیا، یہ دوسرا مقدمہ ہے اس کا. اب پہلا مقدمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ اگر زید آیا تو میں اکرام کروں گا، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے. دوسرا مقدمہ قضیہ خبریہ ہے کہ زید آیا ہے یا نہیں آیا. اب آپ نے دیکھنا ہے قیاس کیسے بنانا ہے، زید آیا ہے تب آپ قیاس بنائیں گے، زید نہیں آیا اس کا الگ نتیجہ نکلے گا. بہرحال جو بھی آپ بنائیں، لیکن اس قضیہ قیاس استثنائی میں لیکن کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن نہیں آیا، لیکن زید آیا، لیکن کا اضافہ ہوتا ہے. اس لیکن کی وجہ سے اس کو قضیہ قیاس استثنائی کہتے ہیں. خوب، جب قیاس استثنائی آپ کے لیے واضح ہو گیا، اب جناب شارح نے کس طریقے سے بیان کیا ہے، دیکھیں عبارت کو. اما الثانی فهو المذکور هنا، یہ والی عبارت دیکھیں. وتقریره ان نقول، تقریر اس طریقے سے ہے، لو لم یکن الواجب تعالی موجودا لازما اما الدور و اما التسلسل. اب یہ قضیہ کیا ہے؟ شرطیہ ہے. اگر واجب تعالی موجود نہ ہو تو یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا. یہ پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ ہے. واللازم بقسمیہ باطلون، لیکن دونوں قسمیں لازم کی باطل ہیں, یعنی دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے. یہ دوسرا مقدمہ ہے, یہ خبریہ ہے لاکن کے ساتھ ہے. لاکن انہوں نے اگرچہ ذکر نہیں کیا لیکن ہے لاکن اس کے اندر. لیکن چونکہ لازم باطل ہے, نتیجہ فل ملزوم, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر لازم باطل ہے تو ملزوم بھی خود بخود کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. ملزوم کیا ہے؟ عدم واجب. یہ باطل ہے یعنی کیا مراد؟ واجب ہے. بس اس طریقے سے نتیجہ لیتے ہیں. فل ملزوم, ملزوم کیا ہے؟ وہو عدم الواجب. کیا ہے؟ مثلہ فی البطلان, جیسے لازم باطل ہے ویسے ملزوم بھی باطل ہے. کیسے استثناء اس طریقے سے تشکیل پائے؟ پر ایک مطلب یہ تھا, اگر منطق انشاءاللہ واضح طریقے سے پڑھی ہوگی تو حتماً یہ مطلب فوراً کلیئر ہو جائے گا. خوب, آج والے بات ہماری. اب تک ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ برہان امکان وجوب کیا ہے, کیسے اس سے واجب تعالی کا وجود ثابت ہوتا ہے. اس میں ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر واجب تعالی برہان امکان وجوب کے ذریعے ثابت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تسلسل یا دور لازم آئے گا. لزوم ہم نے کل بیان کر دیا تھا, آج ہم نے یہ بات پڑھنی ہے کہ دور کیوں باطل ہے اور تسلسل کیوں باطل ہے. دور کے بارے میں تھوڑی آپ کی خدمت میں کل تفصیل عرض کر دی تھی, تھوڑی سی آج توجہ پھر کریں گے, مطلب انشاءاللہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. دور کیوں باطل ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دور مستلزم ہے توقف الشیء علی نفسہ پر. یعنی کیا مراد؟ یعنی ایک چیز اپنے ہی اوپر متوقف ہو جائے گی. کیسے؟ الف اگر معلول ہو اور با علت ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معلول متأخر ہوگا اور با کیا ہے؟ متقدم ہوگا, کیونکہ علت ہے. علت پہلے ہوتی ہے, معلول بعد میں ہوتا ہے. خوب, اگر دور جائز ہو جائے تو دور جائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ با معلول ہے کس کا؟ الف کا. تو اب یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ الف اپنے ہی اوپر متقدم ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ الف معلول ہے لہذا معدوم ہے, کیونکہ علت پہلے ہوگی معلول بعد میں ہوگا. تو با علت ہے, با پہلے موجود ہے, الف ابھی وجود میں نہیں آیا, درست؟ پس یہ بھی معدوم ہے, اس نے بھی وجود کے اندر آنا ہے, درست؟ اب کیا ہو جائے گا جب یہ الف علت بنے گی با کے لیے, چونکہ دور جائز ہے, الف علت بن جائے گی با کے لیے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الف کو پہلے وجود میں آنا چاہیے تاکہ با کو کیا کر سکے؟ وجود میں لا سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شے اپنے ہی اوپر مقدم ہے, یعنی اس کو آنا بعد میں تھا لیکن وہ کیا ہو گئی؟ پہلے آ گئی ہے. اور یہ تقدم مشاہدہ نفس ہے. جیسے مثلا آپ اس وقت ہوں گے جب آپ کا والد ہوگا, درست ہے؟ لیکن اگر دور جائز ہو تو کیا ہو جائے گا؟ مثلا آپ اپنے والد کی علت بنیں گے, ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ وجود میں نہیں آئے ہیں اور آپ علت بن رہے ہیں کس کے لیے؟ والد کے لیے. تو آپ کو پہلے ہونا چاہیے, یہ اپنے سے بھی پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے آنا ہے مثلا 1984 میں مثلا, لیکن آپ چونکہ دور کے جائز ہونے کی حالت میں اپنے باپ کی بھی علت ہیں تو آپ 1984 میں جو آپ نے آنا تھا آپ کو آنا پڑے گا 1984 سے پہلے. تو آپ تقدم مشاہدہ نفس لازم آ گئے, اپنے ہی اوپر مقدم ہو گئی ہے. تو دور مستلزم ہے توقف الشیء علی نفسہ, کہ ایک چیز اپنی ہی ذات پر مقدم ہو جائے. سمجھا دیا ہوگا مطلب, واضح ہوا؟ کیسے تقدم مشاہدہ نفس لازم آئے گا؟ خوب, توقف الشیء نفس پھر کیوں باطل ہے؟ یہ والا مطلب میں نے کل آپ کو تفصیل ناز کر دیا تھا. توقف الشیء چونکہ مستلزم ہے اجتماع النقیزین کے ساتھ, اجتماع النقیزین لازم آتا ہے. کیوں؟ الف اگر معلول ہے تو اس کو مقدم نہیں مؤخر ہونا چاہیے, اور چونکہ دور جائز ہے پس الف علت ہے با کے لیے, پس چونکہ علت ہے اس کو مقدم بھی ہونا چاہیے. تو ایک ہی چیز एक ही चीज की निस्बत बा की निस्बत मुकद्दम भी है और मुअख्खर भी है, मौजूद भी है और मादूम भी है। मालूल है मादूम होना चाहिए इसको, इल्लत है वजूद रखना चाहिए इसको, बस एक ही चीज वजूद भी रखती है अदम भी रखती है, और वजूद और अदम का इज्तिमा एक जगह पर इज्तिमा नफीजैन है। बस दो चूंकि पहला उसका जो लाजिमा है तवक्कुफ शय अला नफ्से है, तवक्कुफ शय अला नफ्से इज्तिमा उन नकीजैन के ऊपर मौकूफ है, और इज्तिमा नकीजैन चूंकि मुहाल है बस दौर भी क्या है मुहाल है, दौर भी बातिल है, दौर भी जायज नहीं है। बात वाज हुई है, दोबारा देखें मतलब और वाज हो जाएगा। अम्मा बयान अमर सानी वह हुआ बयान बुतलान हिमा फनकूल, ये बुतलान है उसमें दौर और तसलसल के बुतलान में है, फनगुल हम कहते हैं अम्मद दौर। फहुवा इबारतुन अन तवक्कुफु शय अला मा यतवक्कफु अलैह, इबारत में शायद दिक्कत करनी है थोड़ा सा, इबारत पेचीदा है, तवज्जो करेंगे तो मतलब वाज़ह हो जाएगा। मिसाल को ज़हन में रखते हुए जैसा कि बाद में मिसाल आ रही है, दौर की तारीफ क्या है, तवक्कुफु शय, शय मौकूफ हो, अलिफ यानी शय के ऊपर अलिफ आप लिख दें, अलिफ मौकूफ हो अला उस चीज के ऊपर, मा ये तवक्कफ हो अलैहे के जो मौकूफ हो खुद अलिफ के ऊपर, खुद उस शय के ऊपर यानी बा, यानी अलिफ का मौकूफ होना बा के ऊपर, इसको दौर कहेंगे। बात वाज़ह है, तवक्कफ शय अला शय का मौकूफ होना उस चीज के ऊपर के जिस चीज पर खुद वो चीज क्या है मौकूफ है, यानी अलिफ अगर बा पर मौकूफ है तो बा ऐसी चीज है कि जो खुद क्या है अलिफ पर मौकूफ है। मा ये तवक्कफ अलैह है यानी वो चीज के जो अलिफ पर मौकूफ है, जो चीज अलिफ पर मौकूफ है अलिफ उसके ऊपर मौकूफ है। तवक्कुफ शय अलिफ का मौकूफ होना अला मा उस चीज के ऊपर मौकूफ होना कि जो क्या है खुद अलिफ पर मौकूफ है। बताजे अलह की जमीर जा रही है शय के ऊपर। कमा अब मिसाल देते हैं, कमा ये तवक्कफ अलिफ अलाबा, जिस तरह के अलिफ मौकूफ है बा के ऊपर, व बा ये वाली इबारत किसकी मिसाल है, मा ये तवक्कफ अलह की, ये उसकी वजाहत है, व बा अला अलिफ और बा मौकूफ है किसके ऊपर अलिफ के ऊपर, वह बातिल बिज़रूरा और ऐसा होना बातिल है बदी ही, बदाहतन बदाहतन बातिल है, बिज़रूरा बातिल है। क्यों, इज यल्ज़मु मिन्हु अन यकूना शैउल वाहिदु मौजूदन व मअदूमन मआन, चूंकि इस किस्म का मतलब लाजिमा रखता है इस बात का कि एक ही चीज मौजूद भी हो और मादूम भी हो, वह मुहालन और यह मुहाल है। वज़ालिका कैसे, लिअन्नहु इज़ा तवक्कफ़ा अलिफ अला बा, अगर अलिफ मौकूफ है बा के ऊपर, काना अलिफ मुतवक्किफ़न अला बा, तो इसका मतलब है कि अलिफ मौकूफ है बा के ऊपर, वअला जमी मा यतवक्कफ अलैहि बा, और उस चीज पर भी उन तमाम चीजों पर अलिफ मौकूफ हो जाएगा कि जिस पर बा मौकूफ है। मिसाल देखें, दिक्कत करें, अलिफ मौकूफ है बा के ऊपर, दुरुस्त है, क्योंकि बा इल्लत बन रही है किसकी, अलिफ की, बस अलिफ मौकूफ है बा के ऊपर, बा खुद क्या है वो खुद भी मालूल है किसी और चीज का, मतलब जीम का, जीम क्या मालूल है, जीम इल्लत है उसकी, दुरुस्त है, बस बा मौकूफ है किसके ऊपर, जीम के ऊपर, जीम भी क्या है मौकूफ है दाल के ऊपर। अब ये कहते हैं कि अगर अलिफ मौकूफ है बा के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि ये बा जिस चीज पर भी मौकूफ है अलिफ भी उसके ऊपर मौकूफ है। मैं मिसाल सादा तार करता हूं इसको, आपका वजूद मौकूफ है आपके वालिद के वजूद पर, दुरुस्त है, अगर आप मौकूफ हैं अपने वालिद के वजूद पर तो आप फकत अपने वालिद के वजूद पर मौकूफ नहीं है, बल्कि वालिद का वजूद जिन जिन चीजों पर मौकूफ है आप उसके उसके ऊपर मौकूफ हैं, क्योंकि बाप का बाप ना हो तो आप फिर भी वजूद में नहीं आ सकते, दुरुस्त है, अगर उसके बाप उसका बाप ना हो तो फिर भी आप वजूद में नहीं आ सकते। बस अगर एक चीज किसी चीज पर मौकूफ हो जाए तो वो उस चीज पर मौकूफ होगी, लेकिन उसके साथ साथ वो चीज जिस पर मौकूफ होगी आप भी उसके ऊपर मौकूफ होंगे, वो चीज उसके ऊपर मौकूफ होगी। परवाज हुई है, यहां भी यही कहना चाहते हैं। कहते हैं कान अल अलिफ मुतवक्किफन अला बा, अलिफ मौकूफ है बा के ऊपर, लेकिन साथ साथ वह अला जमी इमा यतवक्कफु अलैहि बा, बा जिस जिसके ऊपर मौकूफ है उसके ऊपर भी अलिफ मौकूफ है। वमिन जुमलत मा यतवक्कफु अलैहि बा हुवा अलिफ नफ्सो, वो चीज के जिसके ऊपर बा मौकूफ है उनमें से एक चीज यह है कि बा अलिफ पर मौकूफ है, चूंकि दौर जायज है। आपने क्या कहा था, दौर यूं बनेगा अलिफ मौकूफ है बा पर, बा मौकूफ है अलिफ पर। अब अलिफ अगर मौकूफ है बा के ऊपर तो बा पर मौकूफ है, और उस चीज पर भी मौकूफ है कि बा जिस पर मौकूफ है, तो बा किस पर मौकूफ है, दौर दौर की हालत में बा किस पर मौकूफ है, अलिफ पर, तो अलिफ अलिफ पर मुकदम हो जाएगी। देखा करें मैं थोड़ा इसको क्यास बनाता हूं, अलिफ मौकूफ है बा पर, बा मौकूफ है किसके ऊपर, अलिफ पर। नतीजा क्या निकलेगा, अलिफ अलिफ पर मौकूफ है। यह बयान करना चाहते वल मिन जुमला थे मा यतवक्कफु अलैहि बा हुवा अलिफ नफ्सो, बा जिस चीज पर मौकूफ है उनमें से एक चीज जो है वो अलिफ पर मौकूफ होना है उसका। फयल्ज़म तवक्कुफ़ुहु अला नफ्सिहि, इसका मतलब है कि अलिफ अलिफ पर मौकूफ है, यानी अपनी ही ज़ात पर क्या है, मौकूफ है। वल मौकूफ अलैह मुतकद्दिमुन अलल मौकूफ, जो मौकूफ अलैह होता है, जो इल्लत होती है वो मुकद्दम होती है किसके ऊपर, मौकूफ पर, यानी मालूल के ऊपर। फयल्ज़म तकद्दुमुहु अला नफ्से, क्योंकि अलिफ अलिफ की इल्लत बन रही है, बस लाजमा यह आएगा कि अलिफ मुकद्दम है खुद अलिफ के ऊपर, तकद्दुम शायल नफ्से लाजिम आएगा। खूब वल मुतकद्दिम मिन हैसु इन्नहु मुतकद्दिम, मुतकद्दिम इस एतबार से कि मुकद्दम मुतकद्दिम है, क्योंकि इल्लत है, इल्लत होने के एतबार से बा क्या है, मुकद्दम है। यकूनु मौजूदन कबल अल मुताखिर, इसको मौजूद मुतकद्दिम इस एतबार से कि मुतकद्दिम है, ये मौजूद होता है मुताखिर से पहले, यानी मालूल से पहले मौजूद होता है ये मुताखिर यानी मालूल। फयकूनो, बस नतीजा ये निकलेगा कि अलिफ ही ना इज़न मौजूदन कबल नफ्से, अगर अलिफ अलिफ पर मौकूफ हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि अलिफ अलिफ के वजूद में आने से पहले मौजूद है। फयकूनो अलिफ ही ना इज़न, कब के जब अलिफ अलिफ पर मौकूफ हो जाए तो क्या सूरत हाल निकलेगी, अलिफ मौजूदन कबल नफ्से, अलिफ अपने जात पर पहले मौजूद है। फयकून मौजूदन व मादूमन मान, तो अलिफ मौजूद भी है और मादूम भी है, वो वाह मुहालन, और ये मुहाल है, ये हो नहीं सकता, और ये इज्तिमाई नकीजैन है, यानी इन्होंने नाम नहीं लिया, बात यह कि इज्तिमाई नकीजैन लाजम आ रहा है इसका। बस खुलासा, अगर आपसे सवाल कर लिया जाए दौर क्यों बातिल है, दो जुमले, दौर मुस्तलज़िम है तवक्कुफु शय अला नफ्से पर, और तवक्कुफु शय अला नफ्से लाजिम है किसके ऊपर, इज्तिमा उन नकीजैन के ऊपर, चूंकि इज्तिमा नकीजैन मुहाल है बस दौर भी मुहाल है। ये जुमला है, चंद आप कोई इम्तिहान भी ले ले, कोई सवाल भी कर ले, मुसाहिबा करता है आपके साथ, तो आप इस तरीके से इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्या नहीं हो रही, इंतहाई आसान है, थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। बारी ताला की दलील में इस्तेमाल होने वाले मुकदमे की वजाहत है, हमने क्या कहा था, आप चूंकि पिछले दो दरसों में नहीं थे तो आपने मेरे ख्याल में वो सुने भी नहीं है, तो वो सुनेंगे तो ये मतलब वाज़ेह हो जाएगा। आप आए तरतीब से इसी तरीके से, यही जितना मैंने मतलब इस वक्त अर्ज किया है, अगर वो पिछले दो दरस आप सुनेंगे तो ये मतलब इंतहाई वाजहात में से है। अब चूंकि वो मतालिब आपके जहन के अंदर नहीं है, लिहाजा ही मुश्किल लग रहा है। मैंने खूब वजात के, कल मैंने दौर के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, तो आप पहले बुरहान को सुने, जो आप जिन दरसों में आप नहीं थे, सुनने के बाद फिर ये वाला दर्स आप सुनेंगे, बिल्कुल पांच मिनट में आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा। अर्ज ही कर रहा हूँ, ये जहां गिर कर रहे हैं ना आप, जहां फंस रहे हैं आप पे, वो इस वजह से, क्योंकि पिछले मतालिब जेहन में नहीं है आपके, वो सुनेंगे इंशाल्लाह मतलब क्लियर हो जाएगा। वो इसीलिए तो बुजुर्गान नहीं कहते ना कि बाज क्लासें ऐसी होती हैं कि अगर दरमियान में से एक छुट्टी भी हो जाए तो बिल्कुल राबता खत्म हो जाता है, फिर उसको मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कलाम और फलसफा उनमें से, यानी ये वो ऐसे मुकदमात आपस में मिले हुए होते हैं मथालिब के, अगर एक मुकदमा भी मिस हो गया नहीं समझे आप तो तमाम मथालिब चाहे जितना मर्जी या जोर लगा लें समझ नहीं पाएंगे उसमें आकर। कोशिश करें टाइम निकाल के वो दर्स सुने पिछले जिसमें आप छुट्टी की है आपने, तो मतलब वाजे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनके पास मौजूद हैं, ले लें आप, तो खबरा में मौजूद हैं इसमें। अब मत तसलसल, दौर तो बातिल हो गया, अब तसलसल क्यों बातिल है? दो तसलसल है क्या, मतलब ये भी थोड़ा दिक्कत तलब है, इतना मुश्किल नहीं है, फकत ये कि तवज्जो करेंगे मतलब वाजे हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मतलब आज बयान किया जाएगा, कुछ जो मतलब जो है वो बाद में। तसलसल इसको कहते हैं कि तसलसल का लुगवी माना उस जंजीर के अंदर है, यानी जो हलके बने होते हैं जंजीर के अंदर, यानी वो हलके इस तरीके से जो बने होते हैं, इस किस्म की जो जंजीर होती है उसको कहते हैं तसलसल, सिलसिलावार उसको कहते हैं, क्योंकि एक हलका दूसरे हलके के साथ मिला हुआ होता है, वाबस्तगी पाई जाती है उनके अंदर, इस वजह से उसको तसलसल या सिलसिला कहा जाता है। तसलसल कहते हैं कि मुमकिनात की वो लड़ी कि जो आपस में एक दूसरे के साथ इल्लत व मालूल का राबता रखती हो। आपने एक लड़ी बनाई मुमकिनात की, अलिफ बा जीम दाल मसलन ये सारी, ये जैद आमर बकर मसलन ये सारे एक लड़ी में आप, लेकिन उनके दरमियान आपस में इल्लत व मालूल का राबता होना चाहिए। मसलन मैं और आप आपस में इल्लत व मालूल नहीं है, दुरुस्त है? तो लिहाजा मुमकिनात की ऐसी लड़ी बनाएं कि जिसके अंदर इल्लत व मालूल का राबता हो। ये जब एक लड़ी जिनके दरमियान इल्लत व मालूल का राबता हो, इसके अंदर तसलसल मुहाल है, इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अगर ये लामुतना ही चलता जाए तो ये मुहाल है, ये दुरुस्त नहीं है। हां मैं भैया, तसलसल वो वाला मुहाल है, ये दिक्कत से जहन में बिठा लें, तसलसल वो वाला मुहाल है कि जहां पर सिलसिले के अंदर इल्लत व मालूल का राबता हो। अलिफ इल्लत है बा के लिए, बा इल्लत है जीम के लिए, जीम इल्लत है दाल के लिए, यूं सिलसिला चले इल्लत व मालूल वाला, ना कि ऐसा सिलसिला कोई बना दे जिसके अंदर असल राबता इल्ली व मालूली ना हो, ना ऐसा तसलसल कभी मुहाल नहीं है, चलता जाएगा ऐसे ही, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। तसलसल वो वाला मुहाल है कि जिसके सिलसिले में राबता इल्लत व मालूल का हो, पहला मालूल हो दूसरे के लिए, दूसरा मालूल हो तीसरे के लिए, तीसरा मालूल हो चौथे के लिए, यह सिलसिला इस तरीके से चलता जाएगा, यह तसलसल मुहाल है। फलसफे में यह तसलसल जायज नहीं है, और बड़ा मुतअद्दिद बराहीन इकामा किए गए हैं इसके ऊपर के तसलसल क्यों मुहाल है। हमने फकत एक बुरहान यहां पर पढ़ना, चूंकि पहली किताब है ये इल्मे कलाम की, इस एतबार से खूब यह मतलब आज होगा तसलसल किसे कहते हैं। इबारत देखें, अम तसलसल फहुवा तरत्तुबु इललिन व मालूलातिन, तसलसल किसे कहते हैं कि जो क्या हो तरत्तुब हो जिसके अंदर इल्लत व मालूल वाला, बेहैसो इस तरीके से उनके दरमियान राबता इल्ली व मालूली हो कि यकूनु साबिको इल्लतन फी वजूद लाहिक ही, कि साबिक इल्लत बन रहा हो वजूद लाहिक के लिए, यानी पहले वाला इल्लत हो दूसरे के लिए। फहुआ हा कजा ऐजन, तो कहते हैं इस किस्म का जो तसलसल है वो भी क्या है, हा कजा ऐजन, ऐजन से मुरादी जिस तरीके से दौर बातिल है, यह भी क्या है बातिल, बातिल है। क्यों बातिल है? फरमाते हैं इसलिए तीन शिक्के बनती हैं। मतलब मिसाल ने अपने जहन के अंदर एक तस्वीर बनाए कि एक सिलसिला है, लड़ी बनी हुई है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस मसलन की आपस में लड़ी बनी हुई है, और एक इल्लत है दो के लिए, दो इल्लत है तीन के लिए, तीन इल्लत है चार के लिए, इस तरीके से सिलसिला चला जा रहा है। यह सिलसिला आप अपने जहन के अंदर रखें। अब या इस सिलसिले के बारे में ये बात तो कंफर्म है कि ये जो सिलसिला है ये मुमकिनुल वजूद है, क्योंकि अभी हमारा फर्ज है, हमने वाजिब को साबित करना है, अभी हम उससे बात कर रहे हैं कि जो वाजिब का कायल है, नहीं है, हम उसको कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वाजिब के तो तुम कायल नहीं हो। तो ये सिलसिला पूरे का पूरा क्या है? मुमकिनुल वजूद है, दुरुस्त है। अगर ये पूरे का पूरा सिलसिला मुमकिनुल वजूद है, और मुमकिनुल वजूद के बारे में हमने क्या कहा है कि ये क्या होता है, वजूद खुद नहीं रखता, वजूद इसको किसी ने देना ही देना है, दुरुस्त है। तो अब हम इससे भी पूछेंगे कि ये जो पूरे का पूरा सिलसिला वजूद में आया है, इसके इस वजूद की इल्लत क्या है, कौन है इसको वजूद देने वाला इस पूरे सिलसिले को? तीन एहतमाल हैं। पहला एहतमाल ये है कि हर जुज दूसरे जुज के लिए इल्लत वाके हो रहा है, ठीक है। मसलन अलिफ अपने लिए इल्लत है, बा अपने लिए इल्लत है। दूसरा एहतमाल ये है कि पूरे के पूरे सिलसिला जो है इसको खुद उसने मतलब एक जुज ने फकत खल किया है, उसको पूरे के पूरे सिलसिले को एक जुज ने खल किया है। मसलन अगर हमारा सिलसिला एक से लेकर हजार से भी आगे जा रहा है, यानी लामुतनाई है, हम कहते हैं जो हजार नंबर पर अदद है ना, दृश्य है, इसने पूरे सिलसिले को खल किया। इसका मतलब क्या है कि हजार ने हजार से पहले वाले आदाद को भी खल किया है, और हजार से बाद वाले आदाद को भी खल किया है, और अपने आप को भी फिर खल किया है, क्योंकि सिलसिले का हिस्सा है वो। बस दूसरा एहतमाल ये है कि एक जुज ने पूरे सिलसिले को खल किया है। तीसरा एहतमाल ये है कि इस पूरे सिलसिले को इस सिलसिले से बाहर वाले ने खल किया है, इस सिलसिले के अंदर खालिक नहीं है। ये तीन एहतमाल है, और तीनों इस्तेमाल बातिल हैं, पस तसलसल मुहाल हो जाएगा। पहला इस्तेमाल क्या था कि हर जुज जो है वो क्या कर रहा है, अपने अंदर मुअस्सिर है, हर जुज ने अपने आप को खल किया है, तो कहते हैं ये वाला मुहाल तो असल में बिल बदहा बातिल है। क्यों? इससे तवक्कुफ शैला नफ्से लाजिम आता है, और तवक्कुफ शैला नफ्से इज्तिमा नकज़ैन को मुस्तलज़िम है, बस मुहाल है। बस हर जुज अपने लिए इल्लत वाक़े नहीं हो सकता। अलिफ अदद यक ने अपने आप को खल्क नहीं किया, कोई चीज अपने आप को खल्क नहीं कर सकती। अपने आप को अगर खल्क करना है तो पहले होना चाहिए, चूंकि इसने खल्क होना है बस इसको पहले नहीं होना चाहिए, बस एक चीज है भी और नहीं भी, और ये इज्तिमा नकज़ैन मुहाल हो जाएगा। बस पहला इहतमाल बातिल। दूसरा इस्तेमाल भी बातिल है। कौन सा दूसरा इस्तेमाल? कि एक जुज ने पूरे सिलसिले को खल किया है, मसलन हजार नंबर अदद ने सबको खल किया है, तो इसका मतलब क्या है? पहला मतलब तो इसका यह है, चूंकि हजार इसी सिलसिले के अंदर है, बस उसने अपने आप को भी खल किया है, तो ये एतराज इसके ऊपर भी वारिद होगा, तकद्दुम मुशाला नफ्से, कि हजार जो है चूंकि मखलूक है बस इसको मालूम होना चाहिए, और चूंकि खालिक है बस इसको मौजूद होना चाहिए, बस एक ही चीज मालूम भी और मौजूद भी है, ये तवक्कुफ शैला नफ्स है, पर जायज नहीं है। दूसरा इतराज क्या है इसके ऊपर? दूसरा इतराज यह है कि तकद्दम में इलल लाजिम आएगा, अपनी ही इल्लतों के ऊपर क्या है मुकदम हो रहा है। मसलन आपकी इल्लत आपका बाप है, अगर आप अपने बाप की इल्लत बन जाएं तो फिर आप अपने बाप पर मुकदम हो जाएंगे। तकद्दम बर इलल लाजिम आएगा, अपनी ही इल्लत के ऊपर तकद्दम होना लाजिम आएगा, और यह जायज नहीं है। असलन तो कौन है, मतलब आपको वजूद में लाने वाले पर अगर आप मुकदम हो जाएं तो फिर इसका मतलब यह है कि जब तक आप नहीं होंगे तो वो वजूद में नहीं आ सकता, तो आपका वजूद मौकूफ है आपके बाप के ऊपर, तो ना बाप आएगा ना आप आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाप ने आपको वजूद में लाना है और आप बाप की इल्लत हो, तो इसका मतलब बाप से पहले आपको वजूद में आना चाहिए, तो ना बाप आएगा ना आप आएंगे। बस दूसरे इस्तेमाल के अंदर कि जहां पर एक जुज ने पूरे सिलसिले को खल किया हो, दो इश्काल वारिद होते हैं, एक तकद्दुम मुशअला नफ्से लाजिम आ रहा है, दूसरा तकद्दुम बर इलल खुदश, यानी अपनी ही इल्लतों पर तकद्दुम लाजिम आ रहा है उसका, यानी हजार के अदद में जो इसकी इल्लतें आती हैं उनके ऊपर भी तकद्दुम लाजिम आएगा, और वो मुहाल है, नहीं हो सकता। तीसरा इस्तेमाल क्यों बातिल है, उसको कल बयान करके इंशाल्लाह मतन तस्बीह करेंगे और हमारी ये वजूद खुदा की बात जो वो खत्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सेव करें।